नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी के बारे में। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद
आशुतोष जी। जैसा कि ये विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसके बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था, दिसंबर में इस बात की घोषणा करी थी, तो क्या मानते हैं किस तरह से ये एक गेम चेंजर के रूप में आएगी?
गेम चेंजर इस सेंस में इसको कहना चाहिए कि जो खामियां थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी लगातार खामियां, करप्शन हो रहे थे, लोगों के नाम गलत तरीके से चढ़ा करके कोई और पैसे वसूल रहा था, ये खामियां दूर होंगी। और जो विकसित भारत की सोच है कि अगर देश का विकास होना है तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी। और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया, और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि वो पूरा होगा।
जी, चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है इसके बारे में उन्होंने बताया।
विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, बहनों को अब 100 नहीं साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक, जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
जो विपक्षी राज्य हैं उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा, अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए, अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी, जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही मुझे वही लगता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है, और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया, भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है, और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है, अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो यहाँ जवाबदेही की गई है।
जवाबदेही की आपने बात करी तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
अधीक्षित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
2-3 बड़े अंतर हैं। अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें, प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें। रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो। जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम में क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं। गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीज का इसमें प्रोविजन किया है और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है
जी। क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने अभी
बिल्कुल
कि जी, बहुत जी, सारे कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे इस साल, उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है। अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे। राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा
जी। इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे। जल संरक्षण के काम, गांव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क जो जरूरी है सब किया जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, FPOs हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं जैसे रिटर्निंग बाल वगैरह अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहां पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6-9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा।
जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा, या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो। और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज देश के की प्राथमिकता में शामिल है, तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए, आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है, जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी। हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा। तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे ही। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है। शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं न कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है, जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गांव को होगा। और इसीलिए बात हो रही है ना कि गांव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गांव का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं। गांव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
जी बिल्कुल। अब अगर कोई गांव का एक मजदूर, आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही ये एक हिसाब होता है
जी,
उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास, ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी।
जी, क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरह की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी कि खासतौर पर जरूरत है ग्राम के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
बिल्कुल, यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
चलिए, तो मोटे तौर पर ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे, 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही साथ भुगतान भी समय पर मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज्यादा आकर्षक बनाती हैं और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।